श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय
श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
ओम ज्ञान तिमिरांध ज्ञानांजन शनाके चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयां ददाति स्वपदांकितं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांशं श्री रूपां सागर जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो हम साक्षी गोपाल के दिव्य चरित्र के बारे में सुन रहे थे कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आदि भक्तों को ये चीज का वर्णन करते हैं। तो हमने सुना कि किस प्रकार से गोपाल केवल अपने भक्तों का जो वचन है या प्रतिज्ञा सत्य बनाए रखने के लिए स्वयं विग्रह रूप में वो चलना शुरू करते हैं। तो भगवान अपना वचन तोड़ते हैं अपने भक्तों की जो प्रतिज्ञा है उसको उसकी रक्षा करने के लिए। तो हमने सुना कि राजा पुरुषोत्तम देव जब कर्नाटका में या दक्षिण भारत से साक्षी गोपाल को वो ले आते हैं क्योंकि वो महान जगन्नाथ जी के भक्त थे और गोपाल को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हे गोपाल आप मेरे राज्य में चलो। तो महान भक्त होने के कारण जो भगवान है उनके भक्तिमय प्रेम में वश होते हैं तो भगवान मना नहीं करते गोपाल और गोपाल को वो लेके स्वयं आ जाते हैं। तो भक्ति का मतलब ही ये है कि प्रेम पूर्वक जो सेवा। तो एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जब कटक में इनको स्थापित किया था उस समय कटक में मंदिर था भुवनेश्वर के पास अभी तो जगन्नाथपुरी के पास है। तो राजा अपने पत्नी के साथ जाता है रानी के साथ गोपाल का दर्शन करने के लिए है और जब वो रानी गोपाल का दर्शन करती है तो इतनी अधिक भगवान की ओर आकर आकृष्ट हो जाती है कि अपने शरीर के सारे जो अलंकार आदि हैं वो गोपाल को वो समर्पित करती है। तो हम कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। ताहर नासाते बहु मूल्य मुक्ता होय, ताहा दिते इच्छा है ल मने ते चिंताय। तो जो रानी है वो सारे अलंकार उन्होंने भगवान को समर्पित किए हैं। तो जो भगवान देखते कि कितनी मूल्यवान जो चीज, जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि हम कितनी चीजें दे रहे हैं, लेकिन भगवान ये भी देखते हैं कि हमने कितनी चीजें रखी हैं, अटैचमेंट्स कितनी रखी हैं, जो हम त्यागना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। कृष्ण ये चीज को ज्यादा ठीक ढंग से देखते हैं। तो वो जो रानी है, ताहर नासाते बहु मूल्य मुक्ता है, एक रत्न पर्ल से बना हुआ उसके नाक में, क्या कहते हैं उसको, नथनी, क्या कहते हैं स्त्रियां जो नाक में पहनती हैं, नथुनी समथिंग, जो नाक में डालती हैं स्त्रियां, वो बहुत ही मूल्यवान था और वो रानी ने पहना हुआ था। और रानी की ये डिजायर हुई कि मैं ये जो बहुत मूल्यवान नथुनी है वो मैं गोपाल को देना चाहती हूँ। उसने साले अलंकार तो दे दिए, लेकिन और भी एक रह गया था, लेकिन उसके हृदय में ये इच्छा भी आ गई कि ये तो सबसे मूल्यवान है, विशेष जो पर्ल्स है उससे बनाया गई थी वो। वो रानी ने विचार किया कि मैं ये तो गोपाल को देना चाहती हूँ, और वो सोचने लगी, क्या सोच रही थी वो, ठाकुरे नासाते जदि छिद्र था कि तबे यही दासी मुक्ता नासाए परायत। तो वो अपने आप को भगवान की दासी समझ रही है, सर्वेंट, और जो सेवक है भगवान को हर प्रकार से सर्व कर। तो वो जो रानी है वो क्या करती है, वो सोचती है कि अरे गोपाल के नाक में यदि छिद्र है तो मैं स्वयं ही ये जो मुक्ता जो पल से बना हुआ ये नथुनी है ये गोपाल को मैं पहनाना चाहती हूँ। तो ये उसने ये इच्छा व्यक्त की। तो गोपाल इन दो लीलाओं से इसी चीज को दर्शाते हैं कि एक तो है, कई चीजें हैं, एक तो हमने सीखा कि किस प्रकार से जो गोपाल है वो इस लीला से गोपाल ये चीज प्रकट करना चाहते हैं कि वो अपने विग्रह से अभिन्न है और उसी प्रकार से हमें उनको सर्व करना चाहिए, कि जो डीटीज हैं वो साक्षात कृष्ण से अभिन्न है, वो भगवान से भिन्न नहीं है। तो भगवान इसलिए सकल इंद्रिय वृत्ति मंती, तो वो विग्रह रूप में है फिर भी उनमें गुण क्या है कि वो किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे गोपाल चले आते हैं, और विशेष रूप से ये डीटी फॉर्म भगवान के भक्तों के साथ भक्त वत्सलता का आदान प्रदान करने के लिए भगवान धारण करते हैं। भगवान के भक्त उनके साथ कैसे रेसिप्रोकेशन करेंगे, तो ये डीटी फॉर्म के द्वारा भगवान करते हैं। माधवेंद्रपुरी के बारे में हमने सुना, तो ये विग्रह रूप दोनों के लिए है, एक तो जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए है, और जो ऑलरेडी मुक्त है उनके लिए भगवान के साथ दिव्य आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन, लविंग रेसिप्रोकेशन करवाने के लिए। जैसे जीव गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से जब एक डेटी कार्विंग करके दिया राधा दामोदर, तो जीव गोस्वामी बहुत आनंदित हुए, और राधा दामोदर इतने अधिक अटैच्ड थे जीव गोस्वामी से, भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि वो जब भोगा ऑफर करते थे तो बुलाते थे, ए जीव इधर आओ और बैठो मेरे साथ, देखो मैं कैसे खा रहा हूं। तो जीव गोस्वामी अल्टर के अंदर, हमें पर्दा डालना पड़ता है, वहां भगवान उनको बुला रहे हैं कि आप देखो, क्योंकि भक्तों को आनंद देना ही भगवान का महत्वपूर्ण बिजनेस है, भगवान का दूसरा कोई कार्य नहीं है। भगवान अपने भक्तों को आनंद देना ही उनका कार्य है जो यहाँ आते हैं अपने आदान प्रदान के द्वारा। और तो कभी कभी जो राधा दामोदर वो अपना बांसुरी बजाया करते थे और जहां भी जीव गोस्वामी हो उनको दौड़ के आना पड़ता था। इसका मतलब है कि उन कोई वो मांग कर रहे हैं दामोदर जी। तो इस प्रकार से ये जो विग्रह फॉर्म है ये जो मुक्त है उनके लिए भी है ताकि वो भगवत प्रेम का रसास्वादन करे भगवान के विग्रह से आदान प्रदान करके सर्व करके। और जो इस जगत से मुक्त भी होना चाहते हैं भगवान ने उनके लिए अपना रूप दिया है ताकि उनको हम स्पर्श कर सकते हैं, हम उनको सर्व कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि डेटी वर्शिप ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप सारे इंद्रियों को लगा सकते हो, बाकी चीजों में आप सारे इंद्रियों को नहीं लगा सकते हो। तो ये विग्रह की सेवा क्या है कि वहां आपकी सारी इंद्रियां लग जाती हैं, आंख है, कान है, जीवा नाम का उच्चारण करती है, हाथ पांव त्वचा सब लगता है, भगवान का स्पर्श हो रहा है, भगवान का देख रहे हैं, भगवान का मसाज हो रहा है, भगवान को जो तैलम अर्पित करते हैं उसका हम सूंघते हैं, पुष्प को सूंघते हैं। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियां उनके सेवा में लगती हैं जो विग्रह के सेवा में। तो जितना अधिक हम विग्रह को सर्व करते जाते हैं उतना उनका ब्यूटी बढ़ता है और उसी के साथ साथ जो सर्विस करने वाला भक्त है उनका भी सुंदरता बढ़ने लगता है। तो भगवान, क्योंकि आप देखेंगे कि जो विग्रह है वो सेवा से और उनका सुंदरता बढ़ता है और उनका बॉडी बढ़ता है। राधा राज बिहारी जो जुहू में है उनका देखा गया है कि जब इंस्टॉल किए थे और अभी उनके कपड़ों का हर बार जो लंबाई चौड़ाई है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये एक आश्चर्य है क्योंकि सर्विस के द्वारा भगवान आनंद अनुभव करते हैं और हमारी प्रेयर शादी को इस फॉर्म में इस रूप में भगवान स्वीकार करते हैं। तो ऐसी जो ये जो रानी है वो भगवान को सर्व करना चाहती थी अपने नाक में जो वो है। ये कोई कहेगा अरे तो अपराध है, स्वयं ने यूज की हुई चीज भगवान को आप कैसे दे सकते हो, पहले भगवान को पहनाना चाहिए फिर हमने प्रसाद रूप में लेना चाहिए। लेकिन उनके जो ऐसे महान भक्त हैं जैसे शबरी आदि हैं कि वो एटीट्यूड डिफरेंट है। शबरी का कैसे है, हम तो भोग लगाने से पहले खिला नहीं सकते, हमारे लिए तो नियम है कि चख नहीं सकते आप भोजन जो भोग कुक कर रहे हो। लेकिन शबरी ने तो पहले ही चख लिया था और बाद में भगवान को खिला रही थी। तो भगवान को और स्वीट महसूस हो रहे थे वो बेर, क्यों? क्योंकि शबरी का जो अत्यधिक भगवान के प्रति जो सर्विस एटीट्यूड है वो भगवान आस्वादन कर रहे थे उस भावना को। तो ये जो रानी है वो उनको दे रही है अपने नाक का निकाल कर, वो सोच रही है कि मैं सर्व करना चाहती हूँ। इससे और भी सीख सकते हैं कि जस्ट डिजायर करने मात्र से सर्विस की कृष्ण चीजें अरेंज करते हैं या भगवान सेवा लेने के लिए सारे अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले की इच्छा करें, भगवत सेवा की सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। इसलिए तो हमसे प्लेज करवाया जाता है, कितने हजार गीता, 75,000 भगवत गीता, ये क्या है, पहले इच्छा करो और कृष्ण फिर अरेंज करेंगे। तो ऐसे ऐसे वंडर्स हुए हैं इच्छा करने में। माधवेंद्रपुरी ने इच्छा की क्या, स्वीट राइट चाहिए मुझे खाने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं जाके वहां गोपाल के लिए बनाऊंगा गोवर्धन में। तो भगवान ने क्या किया, अपनी सेवा के लिए चोरी की। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि केवल जो भक्त है सिंसियरली डिजायर करता है भगवान की ओर जाने के लिए तो भगवान कहते हैं हाँ मैं बुद्धि देता हूं, तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं। तो ऐसे ये जो रानी ने सेवा की इच्छा की, भगवान वो जानते थे कि ये गोपाल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण से अभिन्न है। हाँ, कृष्ण से अभिन्न है, डेटिस को छूते हैं तो भी सॉफ्टनेस महसूस होता है प्रेमी भक्त के लिए तो वो है, तो ऐसे कई उदाहरण है। क्योंकि भगवान, जैसे उस दिन में कह रहा था अब रंगनाथ रामानुजाचार्य का ना, तो रामानुजाचार्य के लिए रंगनाथ जी स्वयं आते हैं उनको वेलकम करने के लिए, है कि नहीं। तो इतना ये है विग्रह का जो प्रेम अपने भक्त के लिए। तो एत चिंती नमस्कारी गेला स्वभवने रात्रि शेषे गोपाल तारे कहे न स्वपने। तो ये चिंतन करते हुए वो जो रानी है वो अपने घर वापस जाती है कि अरे 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 गोपाल के नाक में ये नासा में छिद्र होता ना, तो ये बहुत रेयर है जो डेटिस के नाक में छिद्र होना, नहीं होता। हम सारे जो डेटिस है इस्कॉन के उनमें जब राधा रानी आदि को वो लगाते हैं तो होता नहीं है, ऊपर हम चिपकाते हैं वो उसके द्वारा। तो लेकिन ये जो रानी है वो भगवान को इस प्रकार से सर्व करना चाहती थी। तो भगवान क्या करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ये दासी भगवान को स्वयं पहनाती, उनके नाक में पहनाती यदि उनको छिद्र होता गोपाल का, भी उनके लिए क्या दिक्कत है, वो इतना किलो 100 दिन तो वो चल के आ गए उधर, तो उनके लिए एक छिद्र डालना कोई बड़ी बात है, प्रकट करना। यदि भक्त सर्व करना चाहता है तो क्या नहीं कर सकते वो। तो वो चली जाती है, तो गोपीना गोपाल स्वप्न में आते हैं और उसका ये चिंतन था सिंसियरली सर्व करने की भावना, हर समय जो भक्त है उस सेवा के बारे में सोचता ही रहता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो दिन रात भक्त के हृदय में वही चलता रहता है, कैसे बुक्स जाएगी, कैसे लोगों को पकड़ूंगा, कैसे अपॉइंटमेंट्स मिलेगी। दिन रात तो कृष्ण फिर योजना बनाते हैं, कृष्ण अरेंजमेंट करते हैं, कृष्ण मिलवाते हैं। तो दिन रात वो रात को सोच ही रहे थे, काफी चिंता कर रहे थे कि मैं गोपाल को देना चाहते हूँ। तो भगवान स्वप्न में आते हैं, बाल्य काले माता मोर नाशा छिद्र करी मुक्ता परा याचिल बहु जत्न करी। हाँ, वो कहते हैं स्वप्न में आकर के मेरी जो माता है, मेरी माता कौन है, यशोदा देवी। अभी उसको कह रहे हैं, रानी को कह रहे हैं कि मैं जब छोटा था बालक था तब मेरी माँ ने बहुत प्रयत्न करके क्या किया था, एक छेद बनाया था मेरी नाक में और बहुत प्रयास के बाद एक सुंदर सा मोती जो पल है रत्न है वो उन्होंने वहां लगाया था। सही छिद्र अद्यापि आचय ना साते सही मुक्ता पराह जहा चाहि आच्छदिते। तो भगवान कहते हैं सही छिद्र, अभी मैं इतना बड़ा हो गया हूं फिर भी वो छिद्र अभी तक गया नहीं, वो अभी भी है, वो छिद्र अभी है, अद्यापि आचय ना साते मेरे नाक में अभी भी है। तो सही मुक्ता पराह, तो तुम जो देना चाहती हो, जो मुक्ता तुम देना चाहती हो मेरे नाक में लगाना चाहती हो, तो वो क्या करो, तो मुझे आप प्रदान करो। स्वप्न देखी सही रानी राजा के पहिला राजा सह मुक्ता लया मंदिर आईला। तो रानी तुरंत उठ जाती हैं, स्वप्न तुरंत अपने जो पति देव हैं पुरुषोत्तम देव राजा जो प्रताप रुद्र के पिता है उनको बताती हैं, और दूसरे दिन ये मंदिर में आते हैं वो मुक्ता लेकर। पराइल मुक्ता नासाय छिद्र देखिया महामहोत्सव कैल आनंदित हैया। पराइल मुक्ता, वो जो मुक्ता है रत्न है वो भगवान के नाक में पहनाती है ये जो रानी है, और सारे लोग राजा के साथ महामहोत्सव मनाते हैं, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। क्योंकि गोपाल ने ये दिव्य लीला प्रकट की फिर से, क्या कि हाँ मेरे नाक में छिद्र है आप आके पहनाओ। जिस प्रकार से गोपाल जो विग्रह है वो सेवा स्वीकार करते हैं, सही है ते गोपाल कटके ते स्थिति यही लागी साक्षी गोपाल नाम है लख्याति। तो उसी समय से ये जो गोपाल है कटक में निवास कर रहे हैं और तब से इनका नाम क्या है, साक्षी गोपाल। नित्यानंद मुखे सुनी गोपाल चरे तुष्ट हैला महाप्रभु स्वभक्त सहित। तो नित्यानंद प्रभु से उन्होंने सुना, हाँ नित्यानंद प्रभु के मुख से गोपाल का चरित्र सुना, तो चैतन्य महाप्रभु अपने जो पर्सनल पार्षद हैं, बाकी तीन चार भक्त जो उनके साथ थे, बहुत आनंद अनुभव करने लगे। गोपाले रागे जबे प्रभु रहाय स्थिति भक्त गने देखे जे न दुहे एक मूर्ति। तो गोपाल के आगे चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, तो सारे भक्त गोपाल को भी देख रहे थे और चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। तो वो जो विग्रह और चैतन्य महाप्रभु, सब भक्तों को लगा कि एक ही है, क्योंकि वो साक्षात कौन है, कृष्ण है, नित्यानंद हैल बलराम, सचिसुत हैल सही, सचिसुत ब्रजेंद्र नंदन है और बलराम कौन है, नित्यानंद प्रभु है। दुहे एक वर्ण दुहे प्रकांड शरीर दुहे रक्तांबर दुहार स्वभाव गंभीर। अभी क्या समानता देखी, कृष्णदास कविराज उसका वर्णन कर रहे हैं कि दुहे एक वर्ण, दोनों का वर्ण एक था। कैसे वर्ण है, गौर वर्ण। कैसा वर्ण है, गौर वर्ण है। तो गोपाल साक्षी गोपाल को भी उस रूप में वो देख रहे थे, एक ही वर्ण में। और दुहे प्रकांड शरीर, कैसे शरीर था, बहुत बड़ा। लॉर्ड चैतन्य 7 फुट के थे, इसलिए प्रभुपाद ने कहा लाइफ साइज डीटी इंस्टॉल करो पंचतत्व। तो आपको पंचतत्व कितने बड़े हैं, पुजारी इतना छोटा लगता है उसके सामने, चींटी के समान, और वो इतने बड़े हैं पंचतत्व। तो इतना बड़ा शरीर, और आप साक्षी गोपाल को आपने देखा होगा तो बहुत बड़े हैं, आप उनके सामने खड़े रहोगे तो आप ऐसा देखते हो, और लेकिन बहुत सुंदर है साक्षी गोपाल। प्रकार दुहे रक्तांबर, तो जो दोनों हैं उनके जो क्लोथ जो वस्त्र हैं एक जैसे हैं। दुहार स्वभाव गंभीर, और स्वभाव से कैसे हैं दोनों, गंभीर हैं। महातेजोमय दुहे कमल नयन दुहार भावावेश दुहे चंद्र बदन। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान के सौंदर्य को से रिलेटेड हमें श्लोक भी सीखने चाहिए, भगवान कई श्लोकों में वर्णन है, इसलिए हम रोज गाते कि नहीं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, क्या है आगे, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्प करोड़ों करोड़ों काम देवों के समान जिनका सौंदर्य है, ऐसे गोविंद देव को मैं क्या कर रहा हूँ, भज रहा हूँ। अब महातेजोमय दुहे कमल, वो दिव्य तेजोमय है दोनों का विग्रह, और नयन कैसे है उनके, कमलवत है, कमल के नयन। एक भक्त था, एक न्यू भक्ता एक ज्वाइन किया था दिल्ली में, तो उसके नयन कमल के समान थे, मैं जब भी देखता था सही में, अभी वो वृंदावन में डिवोटी, ऐसे ऐसे था, अभी मैं देखता हूँ तो मुझे हमेशा याद आता है। चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र के पुत्र को देखा, तभी महाप्रभु को लगा कि इसकी आंखें कैसी है, कमल के समान। तो महाप्रभु तो राजा को नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि राजा शब्द के साथ दो चीजें हमेशा जुड़ी हुई है, स्त्री और धन भोग। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, साधु इसका आशुष संग करता है तो जानिया सुनिया विष का, साधु जान बुझ के बोतले पी रहा है, विष का पान कर रहा है। तो महाप्रभु ने कहा उनसे नहीं मिल सकता, मैं किनसे मिलूंगा, पुत्र से ठीक है मिल जाऊंगा, क्योंकि कहते पुत्र ही दूसरा शरीर होता है पिता का, उनको मिल सकता। तो वो राजकुमार आए तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उसका आलिंगन करते, ओ आपने, आपको देखने मात्र से मुझे नंद महाराज के पुत्र का स्मरण हो रहा है क्योंकि आपकी आंखें कमल के समान है। तो ऐसे कृष्ण की आंखें कमल के समान है, कमल की तुलना हमें समझाने के लिए दी जाती है, वो तो कमल से अधिक सुंदर है। दुहारा भावा वेश दुहे चंद्र वदन, और चंद्रमा के समान उनका क्या है, चेहरा है। चंद्रमा को देख के कैसे आनंद अनुभव होता है कि नहीं, चंद्रमुखी है कि नहीं, फिर उसी पॉइंट पे आ गए हम। चंद्रमुखी, आगे क्या, सूरजमुखी, और फिर क्या, दुहा देखी नित्यानंद प्रभु महारंगे, थारा थारी करी हासे भक्त घन संगे। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद उस गोपाल साक्ष गोपाल को नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार से देखा तो उन्होंने तुरंत भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, हंसने लगे उनको देखकर। यही मत महारंगे से रात्रि वंशिया प्रभाते चलीला मंगल आरती देखिया। ये हमारी परंपरा मंगल आरती में जरूर जाती है। हाँ, मंगल आरती मस्ट है अटेंड करना, यदि आध्यात्मिक जीवन मंगल में करना है। तो यही मत महारंगे से रात्रि वंशिया, तो इस प्रकार से महा आनंद में, महारंगे का मतलब है आनंद के साथ बड़े उत्साह से, वो सब लोग वो रात्रि उधर ही निवास किए। प्रभाते चलीला मंगल आरती देखिया, और फिर उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया मंगल आरती दर्शन के बाद। भुवनेश्वर पथे छे कैल दर्शन विस्तारी वर्णिया छे न दास वृंदावन। तो वहां से भुवनेश्वर आए तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, और सही में चैतन्य भागवत में इतना डिटेल वर्णन किया है इस रूट का, संन्यास से लेके पुरी तक पहुंचते हुए कहां कहां से गए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल वृंदावन दास ठाकुर ने दिए हैं। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उन्होंने कई स्थानों में गए और इसका वर्णन किसने किया है, वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। कमलपुरे आसी भार्गी नदी स्नान कैल नित्यानंद हाते प्रभु दंड धरिल। तो अभी एक चीज का वर्णन नहीं किया था उन्होंने भुवनेश्वर से आगे का, कुछ चीजें रह गई थी। तो वो कहते कि हाँ भुवनेश्वर में लॉर्ड चैतन्य आते हैं तो वहां ये है, कौन से विग्रह शिव जी के, लिंगेश्वर, हाँ तो लिंगराज, हाँ लिंगेश्वर लिंगराज, लिंगराज का दर्शन करते हैं, बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं, अनंत वासुदेव का दर्शन करके प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं और शिव अष्टकम चांद करते हैं शिव जी की स्तुति में और नाचते हैं शिव जी के सामने लॉर्ड चैतन्य। तो वो सब बहुत विस्तार से वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। वहां से आगे कमलपुर, अभी उसका नाम कमलपुर नहीं है, चांदपुर समथिंग है, चंद्रपुर या चांदपुर ऐसे ही है एक स्थान है जिसको जहां इस कौन का टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है, दंड भंगा टेम्पल। तो कमलपुरे आसी भार्गी नदी स्नान कैल, तो भार्गी नदी है वहां, भृगु वहां थे, वहां भृगु मुनि का आश्रम है इस कौन के आगे अंदर जाके, जहां भृगु मुनि सीताराम लक्ष्मण का विग्रह का पूजा करते थे, क्योंकि सीताराम जब वनवास में थे भगवान राम तो वहां आए थे। तो आज भी जब हम गए तो वहां के लोकल लोगों ने कहा कि ये विग्रह बहुत शक्तिशाली है भगवान राम के, जिसको भी बुखार आता है उसके तीन परिक्रमा करने से बुखार आज भी निकल जाता है। तो हम बहुत परिक्रमा कर रहे थे, अब चार पांच ब्रह्मचारी शाम को गए परिक्रमा, इफेक्टिव है। तो आज भी आसपास के सारे लोगों ने वो विशेषता हमें कही। तो भार्गी नदी है, चैतन्य महाप्रभु ने वहां स्नान किया और अपना जो दंड है संन्यास दंड, क्योंकि मायावादी सन्यासी थे तो इसलिए एक दंडा था उनके पास, तो वो दंडा का ठीक है, नित्यानंद प्रभु आप इसको पकड़ो, भी मैं स्नान आदि कर रहा हूं। कपोतेश्वर देखिते गेला भक्तगण संगे एथा नित्यानंद प्रभु कैल दंड भंगे। तो वहां से नदी क्रॉस करते हैं तो उस तरफ एक मंदिर है कपोतेश्वर महादेव। शिवजी इतना तपस्या कर करके पार्वती के साथ वो कपोत इतना वीक हो गए कि कबूतर के समान लग रहे थे। एक कपोतेश्वर महादेव है और दूसरा भी कहा जाता है कि कबूतर का उन्होंने रूप धारण किया था। तो ऐसे कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गए अपने भक्तों के संग में। और यहां नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, एथा नित्यानंद प्रभु कैला दंड भंगे। यहां नित्यानंद प्रभु ने दंडे की क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, भंग कर दिया। तीन खंड करे दंड दिला भासाया भक्त संगे आयला प्रभु महेश देखिया। किसको देख के आ रहे थे, महेश। तो महेश को देखकर आने के बाद तब तक नित्यानंद प्रभु ने एक दंडे के तीन दंडे किए। तो तीन दंडे करके भासाया जल में डाल दिया तो वो तैरते हुए दंड जा रहे थे। तात्पर्य तो बहुत बड़े और सुंदर हैं। जगन्नाथ देवला देखी अविष्ट हैला दंडवत करी प्रेमे नाचते लागिला। तो वहां से जगन्नाथ मंदिर का फ्लैग आदि दिखता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत दूर है वहां से, तो महाप्रभु ने जैसे दूर से देखा तो तुरंत जगन्नाथ जी का स्मरण हो उठा और प्रणाम किया जगन्नाथ को। भक्तगण अविष्ट हैया सबे नाचे गाय प्रेमावेशे बहु प्रभु संगे राज मार्ग जाय। तो भक्तगण अविष्ट हैया सबे नाचे गाय, तो भक्त भी आनंद अनुभव कर रहे थे प्रेमावेश में। और राजमार्ग जो मेन रोड है पुरी का, जगन्नाथपुरी का, सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ जा रहे थे। हासे कांदे नाचे प्रभु हुंकार गर्जन तीन क्रोश पत हैल सहस्र योजन। तो यहाँ उनको वो चीज महसूस हो रही है, युगायतम निमेशेन। वो कुछ ही किलोमीटर का रास्ता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अभी महसूस हो रहा था कि वो जो रोड है वो हजारों किलोमीटर है जगन्नाथ मंदिर से। क्यों, क्योंकि जगन्नाथ जी से वो बहुत अधिक विरह का अनुभव कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि कब मैं पहुंचूं। चलिते चलिते प्रभु आयला अठार नाला तहासी प्रभु के छु बाह्य प्रकाशिला। वो एक नदी होती थी पहले भी, जगन्नाथ मंदिर और जो गुंडीचा मंदिर है उनके बीच एक नदी होती थी। जब रथ यात्रा होती थी तो दो रथ बनाए जाते थे, मतलब तीन है, छह यहाँ और छह उस तरफ। तो अभी क्या है, सीधा जा सकती है ना, रथ जाता है। पहले क्या होता था कि बीच में एक नदी थी तो यहां से जगन्नाथ उस नदी के तट पर जाते थे रथ में और फिर क्रॉस करके उधर तीन रथ होते थे फिर आगे बढ़ते थे। तो जगन्नाथपुरी में घुसने के लिए एक नदी थी और जो बहुत पुरानी, और उसके ऊपर राजा शायद प्रताप रुद्र से पहले ही ये जो ब्रिज बनाया था जिसका नाम क्या था, अठारह नाला। नाला अठारह नाला का मतलब है जो वो होता है ना, राउंड्स होते हैं 18 राउंड्स, इसलिए उसको अठारह नाला कहते हैं। तहा असी प्रभु किछु बाह्य प्रकाशिल, तो वहां आकर चैतन्य महाप्रभु अपने बाह्य अवस्था में आए और बाह्य स्थिति का ज्ञान होने लगा। क्योंकि वहां से आ रहे थे तो जगन्नाथ के विरह में थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे उन्माद। तो फिर यहाँ आकर वो सुध बुध आ गए उनकी वापस और वो पूछने लगे। नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर दंड, नित्यानंद बले दंड हैल तीन खंड। तो नित्यानंदा, हाँ आप मुझे नित्यानंद प्रभु कहे, नित्यानंद को कहते हैं, कौन से प्रभु कह रहे हैं, हाँ नित्यानंद प्रभु कहते हमारा प्रभु रा प्रभु श्री गौरचंद्र श्री गौर सुंदर। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरे प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु, और उनके प्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो इनका बड़ा आसक्ति था, इनके प्रति नित्यानंद प्रभु के प्रति, वृंदावन दास ठाकुर का वो ग्रंथ लिखने बैठे चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, लेकिन वो किसके, वो किसका लिख दिया उन्होंने, नित्यानंद प्रभु का। मतलब कभी नित्यानंद प्रभु का प्रसंग आ गया तो कई चैप्टर्स नित्यानंद प्रभु के हो जाते थे भावावेश में। फिर आगे चल के पता चलता था, अरे मैंने तो नित्यानंद प्रभु का बहुत वर्णन किया, फिर वो गौर लीला प्रस्तुत करते थे। तो नित्यानंद कहे प्रभु देह मोरा दंड, नित्यानंद को वो कहते कि हे नित्यानंदा मेरा दंड दो, तो नित्यानंद कहते हैं दंड हैल तीन खंड। क्या वर्णन, मतलब कितना पोयम, कितना सुंदर है। हैल तीन खंड, तीन खंड हो गए प्रेमा, और कैसे हो गए वो उसका ये बता रहे हैं। प्रेमावेश पड़िला तुम्हें तोमारे धरिनो, तोमा सह से दंड ऊपरे पड़िनो। तो अभी मैंने नहीं तोड़ा क्योंकि ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, पहले भी झूठ बोल के उनको कहा नहीं, ये यमुना, ये यमुना है, बल्कि क्या था,
गंगा
था। अभी दूसरी बार कहते हैं कैसे टूटा, एक्सप्लेनेशन सुनिए टीका के साथ प्रस्तुत कर रहा हो। प्रेमावेश पड़िला तुम्हें तुम्हारे धरिनु और तोमा सह से दंड ऊपरे पड़िनु, मतलब प्रेमावेश में आप आ गए और आप गिर रहे थे, मैंने आपको पकड़ा और हम दोनों किसके ऊपर पड़े, दंड के ऊपर। और इसलिए वो कहते हैं दंड टूट गया। दुई जनार भारे दंड खंड खंड हैला से खंड, कहां पड़िल किछु ना जानिल। कहते दोनों का भार कितने किलो के हैं हम दोनों, ये जो गिरा दंड के ऊपर तो दंड तो खंड खंड हो गया और सही खंड कहा पड़ेल। और अभी मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि वो जो टुकड़े कहा पड़े हैं, और कोई और दूसरा भी नहीं जानता। अभी इतने चलाक थे कि चैतन्य महाप्रभु के साथ वो बाकी तीन भक्तों को भेजा कपोतेश्वर का दर्शन करने, अकेले यहाँ थे, तोड़ा और फेंक दिया, इसलिए वो कहते कोई ना कोई नहीं जानता। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु, मोर अपराधे तोमार दंड है लखंड, जे उचित है मोर कर तार दंड। वो दंड दंड कह रहे, कहते कि ये तो मेरा अपराध हो गया और आपका जो दंडा ये टूट गया, तो जो उचित है वो दंडा आप मुझे दे दो। दंडा मीन्स पनिशमेंट, नहीं कि दंडा दे दो। सुने किछु महाप्रभु दुख प्रकाशिला, ईशत क्रोध करी किछु कही ते लागिला। तो चैतन्य महाप्रभु अभी बहुत क्रोधित हो गए, और वो इस चीज से क्रोधित हो रहे हैं कि जो ये बहुत आवश्यक है रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो करना, ऐसे नहीं कि अभी मैं उन्नत भक्त बन गया तो अभी बाकी चीजें मेरे लिए नहीं है। लॉर्ड चैतन्य डांट रहे, क्यों डांट रहे हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि मैं अभी परम हंस हो गया, उसको डंडा रखना आवश्यक नहीं होता। परम हंस को क्या है, डंडा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये डंडा हमेशा सन्यासी का वो है, साथी है। तो जो डंडे नहीं रखते उनको कौन सा धरातल में कहे जाता है, उनको परम हंस है वो। तो ये तो नित्यानंद प्रभु चार सोच रहे थे कि ये थोड़ी नए भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु थोड़े नए सन्यासी, हर समय डंडा लेके घूमे। और प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था जो सन्यासी हमेशा डंडा रखता था। तो एक बार श्रीधर महाराज जब जुहू टेम्पल का सिल्वर जुबली था, तो उस समय हम गए थे, तो श्रीधर महाराज गए प्रभुपाद के पास। तो उन्होंने देखा कि उनके जो मित्र हैं उसका सन्यास हो गया और उनका सन्यास नहीं हुआ। कौन थे उनके मित्र, लोकनाथ महाराज जो मैं ब्रह्मचारी, तो उनको तो तुरंत सन्यास दिया। प्रभुपाद के पास हर बार बार जाते थे, प्रभुपाद उसको सन्यास दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहे सन्यास। नहीं, लोकनाथ महाराज का तो हो गया सन्यास, उनका मैरिज होने वाला था महाराज का। अपने पहले वो जो घर वाले उनको ले गए मंदिर से, तो अच्छा हुआ कि मैरिज के दिन वो लड़की गायब हो गई, भाग गई। तो प्रभुपाद कहते नहीं, तुम्हारे लिए वो आश्रम नहीं है। तो अद्भुत है प्रभुपाद नागेश्वर कुंद संन्यास, तो ये कहते थे। और फिर देखा उन्होंने देखा, और एक दिन डांट, फिर संन्यास मिला उनको, श्रीधर महाराज को भी दिया। फिर प्रभुपाद डांटते थे, कहते थे देखो तुम हमेशा डंडा नहीं रखते हो साथ, लोकनाथ महाराज से सीखो, वो हमेशा डंडा रखते। और आज भी मैं देखता हूँ, एक बार महाराज में मुझे कह रहे थे कि प्रभुपाद ने मुझे कहा है कि हमेशा डंडा कैरी करो, तो इसलिए मैं हर समय, चाहे वो प्रणाम भी करते हैं या ज्यादातर आप देखोगे कि हर समय वो डंडा कैरी करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु डांट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हाँ कोई भी स्थिति में हो तो भी जो भी वर्ण और आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु भी क्रोधित होकर डांट रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, उससे फिर सहज या प्रवृत्ति बढ़ेगी, इस प्रकार से बाकी सब चीजें बढ़ेगी। नीला चले आनी मोरा सबे हित कैला, सबे दंड धन छिल तहा नारा खिला। मैं तो आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने बहुत बड़ा मेरा हित किया है। आप सब मुझे कहाँ ले आए हो, नीलाचल ले आए हो, जगन्नाथ ले आए हो। सबे दंड धन छिलो, और मेरे पास तो एक ही धन था। हाँ कौन सा धन था, हाँ सन्यासी का एक ही धन है, वो है उसका दंडा, और वो भी आप लोगों ने क्या किया, वो भी रखने नहीं दिया मुझे। तुम्हें सब आगे जहा ईश्वर देखिते, कि वा मी आगे जाय ना जा बो सहिते। या तो अभी इतने क्रोधित हुए हैं कि या तो आप आगे चले जाओ ईश्वर देखिते ईश्वर का देखने के लिए, या तो मैं जाऊंगा, अभी हम संग नहीं, अभी आपका संग छोड़ दूंगा। और नित्यानंद प्रभु इसलिए भी उन्होंने तोड़ा, हाँ क्योंकि जो एक तो एक दंड था, तो वैष्णव के लिए एक दंड उचित नहीं है। हाँ वैष्णव संन्यास क्या है, त्रिदंड है, मन वाणी शरीर, इसलिए वो रैप करते हैं, तीन डंडे बांस के डंडे उसमें रैप करते हैं, मंत्र आदि वगैरह। आजकल तो मॉडर्न डंडे आ गए हैं। माधव महाराज को एक बार सर्व कर रहा था, तो उनके बैग में एक डंडा था, मैंने कहा महाराज क्या है, कहते ये मॉडर्न डंडा है। तो देखा एक भारत में आते तो दूसरा डंडा ले रहे थे, वो जो विदेश जाते तो अलग डंडा, क्या है? वो फोल्ड हो जाता था। तीन भागों में फोल्ड होते रहते थे। तो मैं आश्चर्य हो गया। तो क्यों तोड़ा, तीन टुकड़े किए नित्यानंद प्रभु ने, क्यों, क्योंकि ये वैष्णव दंड होना चाहिए, मन वाणी शरीर से सन्यासी कृष्ण की सेवा में लगा है। और दूसरा क्योंकि ये तो मेरे प्रभु हैं जो सारे जगत के स्वामी हैं, परम ईश्वर है चैतन्य महाप्रभु। हाँ क्योंकि सन्यासी के डंडे में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि भगवान इन सबको कैरी करते फिरे, महाप्रभु देवी देवताओं को कैरी करके फिरे इतना बोझ, इसलिए उन्होंने तोड़ा, आचार्यगण कहते। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को ने वो डंडे को तोड़ना ही उचित समझा, और चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते, कहते आप लोग आगे जाओ या तो मैं आगे जाऊंगा। मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम्हें जाह आगे, आमी सब पाछे जाबो ना जाबो तुम्हारा संगे। तो मुकुंद दत्त कहते हैं प्रभु आप आगे जाइए और हम पीछे पीछे आएंगे। एत सुनी प्रभु आगे चलिला शीघ्र गति, बुझिते ना पारे क्या दुई प्रभु रमति। इस प्रकार से शीघ्र गति से, शीघ्र मतलब तीव्रता से, जलद गति से जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु। और नाम कृष्णदास कविराज कहते हैं इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इन दोनों का जो इंटेंशन था मति, हाँ ये लीला क्यों ऐसी हुई घटना, हाँ ये कोई नहीं जान सकता। एहो केने दंड भंगे तेहो केने भंगाए, भंगाय या क्रोधे ते हो यहा के दोषाय। तन क्या कह रहे सब, यहो केने दंड भांगे, इन्होंने क्यों दंड तोड़ा ये कोई नहीं जान, डिवोटी नहीं जान सकते, और चैतन्य महाप्रभु क्यों गुस्से से चले गए ये भी कोई नहीं जान सकता है, क्यों उन्होंने गुस्सा किया। तो इन दोनों के पीछे रहस्य है। दंड भंग लीला यही परम गंभीर, से बुझे दुहार पदे जार भक्ति धीर। कौन क्वालिफाइड है इस लीला को समझने के लिए? हाँ, एक लीला विचार है और दूसरा तत्व विचार। हाँ, इस लीला के पीछे क्या है, तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है? तो कहते हैं ये समझना बड़ा कठिन है, और हर लीला के पीछे क्या है, तत्व विचार है। गौर गोविंद महाराज इस पर बड़ा जोर देते थे। वो कहते थे लीला विचार, लीला का एक विचार है, लीला के पीछे एक तत्व होता है, उसका भी एक विचार होता है। तो दंड भंग लीला यही परम गंभीर, ये दंड भंग लीला कैसी है, गंभीर है, रहस्यमयी है। तो सही बुझे, कौन इसको जान सकता है, दुहार पदे जार भक्ति धीर, जो इन दोनों के चरणों में जिसका भक्ति दृढ़ है, फिक्स है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में, वही व्यक्ति महाप्रभु के लीलाओं का जो रहस्य है, तत्व विचार है या लीला विचार है, वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि यही एक गौरांगेरा दुटी पद जार धन संपद, आगे से जाने भक्ति रस सार, भक्ति रस को वही जान सकता है, भक्ति के सार को, जिसने किसका आश्रय लिया है, गौरांग महाप्रभु के दो चरण कमलों का। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ब्राह्मण्य देव गोपालेर महिमा ये धन्य नित्यानंद वक्ता जार श्रोता श्री चैतन्य। तो अभी कृष्णदास कविराज कंक्लूड कर रहे हैं कि ऐसे जो ब्राह्मण्य देव हैं, गोपाल ब्राह्मणों के जो देवता हैं, उनकी महिमा बहुत ही अद्भुत है, और नित्यानंद वक्ता जार श्रोता श्री चैतन्य, श्रोता चैतन्य ने श्रोता नित्यानंद प्रभु उसके वक्ता है, चैतन्य महाप्रभु उसके श्रोता है। श्रद्धा युक्त है यहा सुने जय जान, आचिरे मिले तारे गोपाल चरण। क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तब तक हम नहीं करेंगे कार्य इस भौतिक जगत में। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस गोपाल के इस वर्णन को श्रद्धा के साथ सुनता है, जय जान आचिरे मिले तारे गोपाल चरण, आचिरे लंबा समय नहीं लगेगा, तुरंत क्या होंगे, गोपाल के चरणों में वो आसक्त हो जाएगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि रूप सनातनादि गोस्वामियों के कृपा की मैं याचना करता हूं, और इस याचना को करते हुए कृष्णदास इस उनका चरणों का अनुगमन करते हुए चैतन्य चरितामृत को कह रहा हूं। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज इस लीला को प्रकट करते हैं, साक्षी गोपाल की लीला को। और यह मध्य लीला का ये कौन सा अध्याय है, पांचवा अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्णदास कविराज के साक्षी गोपाल देव के दंड भंग लीला की श्री चैतन्य चरितामृत के श्री प्रभुपाद के गौर प्रेमानंद।